हाँ अल्लाह ताला को बंदा कहता है, अल्लाह मैंने तुझसे मांगना है। मांगने की चीज़ें तो बहुत थी, लेकिन मांगने वाला क्या मांगता है। इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दे दे, मुझे ज़िंदगी गुजारने का वो रास्ता दे दे जो तुझे पसंद है, जिस पे चल के तुझे राज़ी कर दूँ। और वो रास्ता किनका था? सिरात अल्लज़ीना अनमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका रास्ता जिन पे तूने इनाम किए, ना कि उनका जिन पे गज़ब किया गया और जो गुमराह थे। यहाँ से सूरत फातिहा का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। इन आयात का उनवान क्या है? हिदायत चाहिए, अल्लाह माफ़ कर दे। शुरू में रब की बड़ाई थी, फिर बीच में बंदे को उसका मुकाम दिखाया गया, तुम क्या हो, तुम समझते क्या हो, एक चीज़ पे भी तुम्हारा इख्तियार नहीं है। किस पे तकब्बुर करें, किस बात पे फ़ख्र करें, कुछ भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा तो फिर उसी से मांगना है ना। और सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मुझे वो रास्ता दे दे जो तुझे पसंद है, वो रास्ता जिस पे चल के तेरे तक पहुंच सकूं, तेरी पसंद का रास्ता, तेरी मर्जी का तर्ज़े ज़िंदगी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह के नबी सल्लम भी दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। सही मुस्लिम की रिवायत है। ए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत, परहेजगारी, पारसाई और तवंगुरी का सवाल करता हूँ, यानी दौलतमंदी, दिल का गिना, क्योंकि गुमराही बहुत तकलीफ़दह चीज़ होती है। इंसान बहुत सारी चीज़ों से निबट जाता है, लेकिन गुमराहियों से निकलना बास दफ़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि जो दुआए कनूत रोज़ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत वाफिनी फी मन आफ़ैत, उसमें भी तो इंसान आफ़ियत मांगता है ना, हिदायत मांगता है। क्योंकि जब बंदे को रब से हिदायत मिल जाती है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया। आप उस दर्द को महसूस करें कि वो लोग जो हिदायत के बग़ैर जी रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में किताब नहीं, इधर से उधर भाग रहे हैं खुशियाँ पाने के लिए, वो महसूस करते हैं कि लाखों खर्च कर देंगे तो खुशी मिल जाएगी, नहीं मिलती। नरम गद्दों पे सोएंगे तो खुशियाँ मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी। खुशी कब मिलती है? जब बंदे को जन्नत में जाने का रास्ता मालूम हो जाता है। किसी के पास कितना ही कुछ क्यों ना हो, और अगर वो अपने घर का एड्रेस भूल जाए, लॉस्ट हो जाए, क्या उसको फ़ायदा होगा? क्या एक इंसान जो घर का रास्ता भूल जाए वो खुश हो सकता है? कभी खुश नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा अबदी घर वो जन्नत है, जिसको पाने के लिए दुनिया में आए थे। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा था कि जाओ वहाँ के लिए तैयारियाँ करके आओ, और हम तो कुछ और ही काम करने लगे। हमने तो काम कुछ और ही शुरू कर दिए, करने तो कुछ और आए थे। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, इनाम वालों का रास्ता। अब अगर इसकी पूरी तफसीर हम करें ना, तो हम कितने लोगों के नाम लिखेंगे, कौन होते हैं इनाम वाले। फिर मगदूब की बात करेंगे तो लिखेंगे इससे फ़लाँ मुराद है और दुआलीन से मुराद वो हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला जो हैं वो बंदे को ये कुरान उसके अपने लिए पढ़ने की दावत देते हैं। तुम देखो इनाम वाले लोग कौन होते हैं। इनाम वाले वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला अपने काम करने की तौफीक दे दे। اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے دے. یاد رکھیے کہ انعام والے لوگ گھروں میں بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوتے, سکھ اور چین کی نیند سونے والے لوگ نہیں ہوتے. انعام والا بندہ بنتا ہے بڑے کام کر کے, انسانیت کو فائدہ دے کے, اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ والوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا کے. اور جب انسان اپنے لیے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے انعام والوں میں چن لے, تو وہ نبیوں اور شہداء اور صدیقین کا راستہ ہے. سب کی زندگیوں کو پڑھ لیں, ایک قدر مشترک ہوگی کہ آرام سے نہیں بیٹھے, چین سے نہیں بیٹھے, صرف ان کی زندگی فن اور کھانا پینا نہیں رہ جاتی. ہاں, ان کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے. بامقصد زندگی کا نام ہے انعام والی زندگی, کیونکہ دنیا میں انعام ملنے شروع ہو جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں سے خوشخبریاں دلاتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہاں بھی صراط مستقیم کی بات ہوئی, وہاں بھی ثم استقاموا. جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے نا, تو پھر وہ اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرتا, کمپرومائزنگ نہیں ہوتا, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی ایسا نہیں رہتا, بلکہ اس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, ایک اپنا طرز زندگی ہوتا ہے. اس کی نظر اپنے رب کے اوپر رہتی ہے, اس کی خوشنودگی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ خانقاہی زندگی نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ لوگوں کے بیچ میں رہنے والی زندگی ہے, گھروں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, شوہروں کے ساتھ, انسانوں میں رہ کے اسلام کا نمونہ بننے والے لوگ ہیں. کسی نے مال نہیں چھوڑے, کسی نے بچے بیویوں کو نہیں چھوڑا کہ میں اللہ والا بن گیا ہوں. آج ہم نے جو دین اختیار کیا وہ ادھورا دین ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے دین پہ آنا ہے تو پہلے تو یہ ساری قربانیاں دو اور بالکل تن تنہا آؤ, پھر تمہیں قبول کریں گے. نہیں, صراط الذین انعمت علیہم. دنیا میں بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں آج ایک عجیب نظریہ آ گیا, اور وہ کیا ہے کہ جو دین پہ آئے گا وہ دنیا میں ناکام ہوگا. یعنی ایک ماں ہے اور اس کے چار بچے ہیں, تو پوچھا جائے کیا کرتے ہیں تو کہتی ہیں فلاں ڈاکٹر بن رہا ہے, فلاں انجینئر بن رہا ہے, فلاں, اور اس ایک کو مدرسے میں ڈال دیا ہے, حافظ بن جائے. کیوں؟ کچھ آخرت بن جائے ہماری بھی, یہ سوچ ہے. یعنی ایک آپ کا سگا تھا, باقی نہیں تھے, لیکن ہم نے کیا سوچا کہ ہم کچھ حصہ اللہ کو دے کے باقی چیزیں اپنے نام پہ کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, تو یہ کون سا راستہ ہے؟ آپ میں سے یا میرے میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ جنت کن چیزوں سے ملتی ہے؟ معلوم ہے نا, کسی کو دین نے اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم کیا؟ نماز ہے, روزہ ہے, شرک نہیں کرو, حرام نہیں کھاؤ, سود سے بچ جاؤ. پھر کتنے ہیں جو مان رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں مانگتے ہیں دین الصراط المستقیم؟ تو یاد رکھیے کہ ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد, بات پہنچ گئی, پتہ چل جائے, حلال حرام کا فرق پتہ چل جائے, یہ تو سب کے پاس ہے. لیکن ایک ہوتی ہدایت توفیق, معلوم پہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے. جو پتہ ہے اس کے لیے اب دل کیوں نہیں مانتا, عمل کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ یہ تو پتہ ہے کہ رب کو کیا پسند ہے, لیکن ویسا بننا کیوں نہیں چاہتی؟ کون سی رکاوٹیں ہیں میری زندگی میں اس معاملے کی جس کو میں عبور کر نہیں پاتی؟ تو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, ایسی توفیق دے کہ اب بس وہ وقت آ جائے کہ میں ویسی بن جاؤں جیسا تو چاہے. میری زبان وہ بولے جو تجھے پسند ہے, میرے دل میں وہ چیزیں جو تجھے پسند ہیں, میری سوچیں तेरी सोचें, और ये सब कुछ दुनिया में आके मिलेगा, फिर बात बनेगी, और इसके लिए इंसान फिर कोशिश करता है, मेहनत करता है, और डर जाता है तो कहता है गैरिल मखदूब, ए अल्लाह उनकी ना दिखाना जिन पे गज़ब हुए। गज़ब वाले कौन हैं? जिनको मालूम था लेकिन अमल नहीं कर सके, मालूम पे अमल नहीं किया, इल्म ले लिया अमल नहीं किया उसके मुताबिक ज़िंदगी में, यानी वो चीज़ें ऐसी लगी जैसे कागज़ के फूल। आपने कभी असली और नकली फूलों का फ़र्क देखा? दूर से एक ही लगते होंगे लेकिन करीब से वो कैसे होते हैं? असली में खुशबू होती है, नकली में खुशबू नहीं होती। असली फूलों को पानी ना मिले तो मुरझा जाता है, और नकली फूलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आप देखिए कि असली फूल जो होते हैं उनके रंग में एक ताजगी होती है, लताफत होती है, नरम होता है। आप छुएं पत्तियों को तो नरम लगती हैं, लेकिन जो नकली फूल होते हैं अमूमन वो सख्त होते हैं, कागज़ के बने हुए खुरदरे। यही फ़र्क है एक असली मुसलमान और एक नकली मुसलमान में। असली मुसलमान कहीं से गुज़र भी जाता है ना तो लोगों को खुशबू आने लगती है इस्लाम की, अल्लाह की मोहब्बत की। उसकी खुशबू अपने तक नहीं रहती, फैल जाती है। आप नकली फूलों को छुपा सकते हैं, असली फूल छुप नहीं सकते। वो अपनी खुशबू से बता देते हैं कि हम इस अलमारी में बंद किए हुए हैं, यहाँ से खुशबू आ रही है। जब ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो जाती है ना तो फिर इंसान असली फूल बन जाता है। फिर उसको पता चलता है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, इल्म लेने लगता है। लेकिन इल्म पे अमल ना हो तो मखदूब। कुछ ने इसका एक इलाज सोचा, इल्म ही ना हासिल करो, ना सीखो, ना सुनो, ना मानो। पढ़ लिया तो मानना पड़ेगा, पढ़ लिया तो अमल करना पड़ेगा। मैं पूछती हूँ, कभी कुरान पाक में कोई एक आयत ऐसी याद है किसी को कि जिसमें लिखा है कि चलो पढ़ोगे नहीं तो फिर छोड़ दूँगा? यानी बाज़ लोग मग़ज़ूब होने से तो बच जाते हैं लेकिन दुआलीन में आ जाते हैं। तो दुआलीन कौन है? जो इल्म हासिल ही ना करना चाहे, अंधेरों में रहना चाहे, सिर्फ इसलिए कि चलो छोड़ो, कौन अब इन मुश्किलों में पड़े। अपनी जान को आसानियों में रखो, अपने आप को बड़ा रखो, रब को ना बड़ा बनाओ। और फिर नतीजा क्या होता है कि जब ज़िंदगी ख़त्म होगी, अल्लाह के सामने जाने का वक्त आता है, तो फिर इंसान सोचता है कि मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं था मेरे पास, अब मैं क्या जवाब दूंगी अल्लाह ताला को। और फिर इंसान रुसवा हो जाता है। कुछ लोग आपसे एक सवाल कर सकते हैं कि ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में तो एक सवाल है कि अल्लाह हमें हिदायत दे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ मांगते थे, तो नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, क्या वो हिदायत पे नहीं थे? सहाबा किराम हिदायत पे नहीं थे? और बाज़ लोग ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिदायत के चार मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने शुरू में आपको भी बताई है, लेकिन अगर उसको एक और एंगल से आप समझ लेंगे तो आसानी होगी। मिसाल देने से मतसल बात से पहले मिसाल आपको अगर दे दूँ कि एक तरीका होता है, किसी से आप रास्ता पूछते हैं, आपको यहाँ से उठ के किसी मस्जिद में जाना है, आप कहते हैं यहाँ कोई करीब मस्जिद है, तो यहाँ से कोई दूसरी बहन आपको कह दें कि हाँ यहाँ से जाएं, इधर मुड़ें उधर मुड़ेंगे तो मस्जिद आ जाएगी। ये एक तर्जा है, उन्होंने भी अच्छा काम किया। दूसरी है, वो कहेंगी कि नहीं यहाँ से निकलें, वो देखें सामने है ना, वो जो इस तरफ से यानी मुड़ेंगे, यानी आपको वो रोड भी दिखा दें जाके कि इस रोड से बस सीधा जाएंगी ताकि मस्जिद हो जाएगी। इन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन एक और हैं, वो क्या कहेंगी कि चले आएँ, मैं आपको वहाँ तक छोड़ आती हूँ, चला के छोड़ के आना। तो हिदायत की दुआ मांगने के लिए पहले मरहले पे वो लोग हैं जिनको भी पता ही नहीं है रब की मर्जी क्या है। अंधेरों में जीने वाले लोग, अंधेरों में जीने वाले, कुछ नहीं है पास। आज मौत आ जाए तो हैरान परेशान खड़े होंगे कि ये क्या हो गया। ऐसे लोग जब कहते हैं दिन सिरातिल मुस्तकीम तो वो दुआ करते हैं कि अल्लाह को इल्म का रास्ता खोल, कोई दरवाज़ा खोल हमारी ज़िंदगियों से, जहालत के अंधेरे निकलें और हम आगे पहुँचें। इसी तरह दूसरे दर्जे पे वो लोग आते हैं जो इल्म हासिल करने लग जाते हैं, यानी इल्म आ गया, आप जैसे लोग इल्म सीख रहे हैं, सीख चुके, पूरा कुरान पढ़ चुके, तो अब वो कहते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो उसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह अब इस मालूम पे अमल की तौफीक दे, हिदायत इरशाद तो मिल गई, अब हिदायत तौफीक दे दे। अच्छा, आप कहेंगे कुछ लोग अमल भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, होते हैं ना कुछ लोग, तो जब वो कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो वो क्या कह रहे होते हैं, वो मांगते हैं इस्तकामत, कि अल्लाह कर तो रहे हैं लेकिन कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं शैतान की बातों में ना आ जाए, कहीं नफ्स के बहकामों में ना आ जाए, बरकरार रखना, यही काम करता रहूं। इसीलिए सहाबे कराम मुस्तरिब रहते थे, बेचैन रहते थे। एक सहाबी को लोगों ने देखा कि सारी ज़िंदगी नेमतें थीं, सब थे, लेकिन बेचैन रहते थे, दुखी दुखी। और फिर वो वक्त भी आ गया जब मौत का वक्त था, तो बड़े मुतमईन, क्यों, ज़ख़म लगे मैदान जंग में, जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर है लेकिन चेहरे पे इत्मीनान है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों है, तो कहने लगे कि दुनिया में जब बड़ी नेमतें थीं, नेकियां भी करता था लेकिन धड़का लगा रहता था, आज कर रहा हूँ पता नहीं मौत के साल में आएगी, और आज मेरे चेहरे का इत्मीनान इस वजह से है कि मैं अल्लाह के रास्ते की मौत में हूँ। उसको यानी चौथा दर्जा क्या हुआ हिदायत का, कि जो बरकरार भी हैं, इस्तकामत भी है, तो वो दुआ करते हैं कि अल्लाह खात्मा बिल खैर करना। पहला क्या था, इल्म दे दो, पता ही नहीं सिराते मुस्तकीम के, इल्म दे दो। दूसरा ये कि इल्म है, अब उस पे अमल की तौफीक दे दे। और अगला क्या है कि चल तो रहे हैं, टूटे फूटे अमल कर रहे हैं, इस्तकामत दे दो, यानी फॉर्म हो जाए, जम जाए, ये दो रुखी चाल छोड़ के एक रुख के हो जाए। और चौथी बात क्या है कि अगर इस तरह की भी अल्हम्दुलिल्लाह कैफियत नहीं तो फिर मौत तक रखना। एक सहाबी हैं कहते हैं कि मेरा एक कदम जन्नत में हो और दूसरा जन्नत से बाहर हो, तब भी मैं अपने आप को जन्नत ही नहीं कह सकता जब तक कि अल्लाह ताला मेरा दूसरा कदम भी अंदर ना ले जाए। तो सोचने की बात है कि फिर हम किस सफ में खड़े हैं, हमने क्या किया इस मामले में, क्या हक अदा हो गया, क्या हमने इस सारी चीज़ों को देख लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कलाम का हक अदा ही नहीं हो सकता। आज सूरत फातिहा में जो मज़मून शुरू हुआ है, सूरत नास पे जाके ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि ये दिन सिरातिल मुस्तकीम की मांगी हुई दुआ अगर आपकी पूरी हो गई ना, तो अल्लाह ताला आपको चुन लेगा। खुलासा हुआ अभी एक किस्म का सूरत का, उस तरह बात नहीं हुई जो करना चाहते हैं, लेकिन अगर आखिर में हम सूरत को यानी इन पॉइंट्स में देख लें, यानी जैसा कि आपसे कहा गया था कि तफसीर के बाद हम इसमें से अपने लिए कुछ अमल की बातें मुंतखब करेंगे, तो इसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी और फिर एक छोटी सी चेकलिस्ट आप अपने लिए भी बनाएंगे, और थोड़ा सा एक आपको यानी आइडिया देने के लिए बताया करूंगी ऐसी चीज़ें, ताकि इनसे फिर फ़ायदा लेते हुए आप अपने लिए भी करें। अगर आपसे कहा जाए कोई कि पूरी सूरत को खुलासे में बताएं, कोई इतना वक्त नहीं लगा सकता कि 2-3 घंटे बैठ के आपसे सुने। तो पूरी सूरत से आपने सीखा क्या, तो आपके पास मालूम होनी चाहिए ना ये बातें कि इस सूरत से मैंने ये बातें सीखी, ये था इसके अंदर इसका असल निचोड़, खुलासा, या कुछ भी आप इसको करें। तो इसमें हमने जो चीज़ें देखी उसको तरतीब से हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो सूरत का, जैसा कि आपको इस पूरी सूरत का उन्वान, खुलासा जो, यानी इसका टॉपिक आप कह लें, तो वो क्या है, इफ्तिताह। फिर शुरू की 3 आयतों जो थी उसमें हमने अल्लाह सुबहान तआला की 4 सिफ़ात देखी। कौन कौन सी? ज़रूरत के वक्त, यानी मुश्किल वक्त में रहमत करने वाला, यानी अर्रहमान। फिर मुसलसल रहम करने वाला, यानी अर्रहीम। फिर मालिकी, कायनात का मालिक। और फिर यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। फिर आयत 4 में हमने बंदे और रब का ताल्लुक देखा। क्या कि इंसान सिर्फ रब की इबादत करता है और उसी से मदद मांगता है। और फिर आखिर सूरत तक एक दुआ मांगी हमने कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर आखिरी आयत में हमने 3 किस्म के इंसानों की बात देखी जिन पे इनाम हुए, जो अल्लाह के गज़ब में घिर गए और जो सीधे रास्ते पे आने की बजाय भटकने लगे। अगर हम अपना ताल्लुक महसूस करना चाहें अपने रब के साथ, तो क्या महसूस किया आपने? जो बातें मुझे समझ में आई वो तो यही हैं कि ना किसी काम को भी अल्लाह ही के नाम से शुरू करना है, सारी तारीफ़ें उसकी हैं। ये बातें ज़ुबान से 20 बार कह चुके हैं, तारीफ़ें उसकी हैं, लेकिन क्या वाकई उसकी तारीफ़ कर रही हूँ? शुक्र सारा उसके लिए, कायनात सारी उस रब की मती है, मेहरबान वही है, रहम वही करेगा, रोज़े जज़ा का मालिक वही है। एक एक लफ्ज़ पे गौर करेंगे ना आप, तो आपको अपने रब से ताल्लुक महसूस होगा। इतनी ज़रूरत है मुझे उसकी, और हमने अपने लिए क्या करना है? इस सूरत को सीख के क्या करना है? एक तो इसको पढ़ना है, सीखना है, समझना है, नमाज़ों में अच्छी तरह पढ़ना है, लेकिन असल में पूरे सबक ने जो खुलासा दिया, जो एक अमल का नुक्ता दिया, वो ग़ुलामी का है। ग़ुलाम बन के जीना, बंदी बन के जीना। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दुका वब्नु अब्दिका। अल्लाह के बंदे बन के जीना, अल्लाह से मदद मांगनी है कि वो सीधे रास्ते पे चलाए। इसी तरह इस पूरी बातों को अपने आप को चेक किया करें, यानी आखिर में आप अपने नोट्स में जो आखिरी सफ़ा है उस पर एक चेक लिस्ट टाइप चीज़ बना लें कि जिसमें आप ये जितनी भी बातें छोटी छोटी बीच में की जाती हैं अपने आप से पूछा करें, क्या मैं जब रब की तारीफ करती हूँ तो मुझे इसका यकीन भी होता है? यकीन होता है कि तारीफ करूँ? ऐसी तारीफ़ तो नहीं करती जैसी हम दुनिया में अक्सर लोगों की करते हैं, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, दिल में कहते हैं छोड़ो क्या ज़रूरत है, ऐसी थोड़ी लगते हैं। क्या वाकई मैं अल्लाह ताला को मालिक यौमिद्दीन समझती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला को अर्रहमान और रहीम समझती हूँ? जो अल्लाह ताला को अर्रहमान और रहीम समझ ले, उसकी ज़िंदगी से मायूसी निकल जाती है, वो एक बामकसद इंसान बन जाता है। और इसी तरह जब मालिक यौमिद्दीन को समझ करती हूँ, तो क्या मैंने उस दिन के लिए तैयारी कर ली है, कर रही हूँ? क्या मैं वाकई सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करती हूँ? पूछें अपने आप से। ये 3 मानी रट ले, बंदगी, इतात और ग़ुलामी। आम दुनिया में कहते हैं आपका ग़ुलाम, कितनों के ग़ुलाम बने हुए हैं, याद रखिए, गुलाम अल्लाह के बन के जिएंगे तो जिएंगे, गैर अल्लाह की गुलामी नहीं करनी, शोहर की गुलामी नहीं, माँ बाप की गुलामी नहीं, बच्चों की गुलामी नहीं, उस रब की गुलामी करनी है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए अगले मरहले आसान हो जाएंगे। और इसी तरह से मदद तो रब से ही मांगनी है। क्या वाकई रब से मांगती हूँ मदद? कितनी ही चीज़ें हैं ना हमारे पास जो हमें ज़रूरत रहती है, किसका ख्याल आता है सबसे पहले जब कोई चीज़ नहीं पास होती तो? हाय माँ पास होती तो मदद कर देती, हाय बहन होती तो वो करती। अपना जायज़ा लिया करें, जब तक हर मौके पे आपको आपका रब ना याद आ जाए तब तक समझें कि अभी इय्याका नाबुदु वाला ताल्लुक नहीं जुड़ा। ये ताल्लुकात की कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं जो गुनाह कराती हैं। अल्लाह के खौफ से बेखौफ जो किए हुए हैं इसलिए कि अल्लाह से ताल्लुक़ टूटा हुआ है। जब ताल्लुक अच्छे होते हैं ना तो काम भी अच्छे होने लगते हैं। इस पूरे शऊर के साथ एक बार फिर तिलावत सुनिए और महसूस करिए कि क्या इस सूरत को मैं अपने लफ्ज़ों में समझ पा रही हूँ बग़ैर अरबी को देखें। नोट्स को मत देखें, सिर्फ तदब्बुर के अंदाज में तिलावत सुनिए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम مالك يوم الدين إياك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
क्यों रोना आ रहा था इनको? हमें तो नहीं आता, हम तो गा गा के पढ़ते हैं, हमारा तो दिल दिमाग कहीं और होता है। वो कौन सी आखिरी नमाज थी कि जिसमें हमने इसको पढ़ा और ऐसे फूट फूट के रोए कि जैसे बिछड़ी हुई माँ से बंदा मिलता है? मुझे तो ऐसे लगता है हम अपने रब से बिछड़े हुए हैं। ये दिल खाली है जो रब की मोहब्बत के लिए बना था, हमने यहाँ बेजान चीज़ों की मोहब्बतें पाल ली, गम लगा लिए अपने आप को। अल्लाह ने दिल में गम का मादा रखा था कि तुम्हें आखरत का गम लग जाए, आग में जाने का गम लग जाए। हमने दुनिया के गमों में अपने आप को खपा दिया, ज़ाया कर दिया। ऐसा ना हो कि कल फरिश्ता आ जाए और हम अभी उसके लिए तैयार ना हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। किसी के बारे में आप सुनते हैं गरीब है, हमारा रिश्तेदार है, उसके घर में खाने को नहीं पीने को नहीं, तब बेचैन होने लगते हैं ना, तरसते हैं। आपको रोना आता है उन लोगों पे, हाय पता नहीं बच्चे क्या खाते होंगे, पता नहीं क्या पहनते होंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो हिदायत से दूर हैं हम उनके लिए तड़पते भी नहीं, हम तो नहीं रोते इन लोगों के लिए। हमारे सामने लोग आग का ईंधन बन रहे हैं, लोग अपनी आग खुद जलाते हैं और हम कभी उनके लिए तड़प के दुआ भी नहीं करते, बेचैन भी नहीं होते हम उनके लिए। मुझे अपने उस्ताद की एक बात याद आ गई कि वो कहा करती थी कि दुनिया की हर नेमत बिन मांगे मिल जाती है, हिदायत नहीं मिलती। इसके लिए तड़पना पड़ता है, इसके लिए दुहाइयाँ देनी पड़ती हैं, बेचैन होना पड़ता है कि अल्लाह तू हमें कबूल कर ले, फिर अल्लाह ताला कहीं इसको कबूल करता है। मैं सोचती हूँ मेरे दिल क्यों नहीं फट जाते अल्लाह की मोहब्बत से और उसकी खशियत से, हम कांप कांप क्यों नहीं जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नौहा किया करते थे, अल्लाह के खौफ से रोया करते थे, नबी सल्लम रातों को रोते थे तो सीने से खोलती हुई हंडिया की तरह से आवाज़ें आती थी। हम क्यों इतने मुतमईन हैं? कोई सर्टिफिकेट मिल चुका, कोई जन्नत का दाखले का टिकट मिल चुका, टिकट रिज़र्व हो चुकी कि जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया, जाओ आज के बाद तुम कुछ भी कर लो। मुझे तो उन लोगों पे हैरत होती है कि जिनको कहा कि आज के बाद तुम कोई नेकी ना करो फिर भी जन्नत तुम्हारी है। 313 सहाबी बदर के, उसके बावजूद बेचैनियाँ देखिए, ओहद में आके लड़ रहे हैं, झगड़ हमें कबूल कर लिया जाए, माल दे रहे हैं, दे रहे हैं। हम होते तो इस खुशी में एक ऐसा जश्न रखते कि उसमें रब को नाराज़ कर देते। 9 दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तबूक के मौके पे कहा कि उस्मान आज के बाद अगर तुम कोई नेकी ना करो तो भी काफ़ी है। इतना अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अबू बकर सिद्दीक को खुशखबरियाँ, उम्र फारूक को खुशखबरियाँ, हज़रत अली को खुशखबरियाँ, और वो रोते हैं, वो कांपते हैं, वो परेशान हैं, घड़े पड़ जाते थे उनके चेहरों पे अल्लाह के खौफ से रो रो के। हम कितने मुतमईन लोग हैं, कोई तड़प नहीं हमारे दिल में कि अल्लाह हमें बचा। अभी दिल ही नहीं बदले, इतनी दफ़ा कह लें बात नहीं बनती जब तक दिल को नहीं लगती। दावत सुनते हैं तदब्बुर करते हुए, जितनी बात सुनी है उसको जहन में रखिएगा।